نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ولا تقربوا اور نہ تم قریب جانا الفواحش فواحش کی بے حیائی کے ما ظہر منہا وما بطن جو کھلے ہوں اور جو چھپے ہوں. اللہ اکبر. دیکھو یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ احکامات ہیں, کھلے چھپے برائی کے بے حیائی کے کاموں کے پاس نہیں جانا. شیطان نے تو بے حیائی کا کام اس دن ہی شروع کر دیا تھا جس دن اس نے, آگے ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو, کہ آپ کے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے جنت میں, ننگا کر دیا تھا ان کو. یہ شیطان نے اس کام سے شروعات کری تھی, کرائی بے حیائی سے تھی. پھل بھی کس لیے کھلوایا تھا؟ تاکہ ان کے کپڑے اتر جائیں. فحاشی کو کون پسند کرتا ہے؟ صرف شیطان. شیطان حکم دیتا ہے, بلاتا ہے فحاشی کی طرف. فحاشی کیا ہے؟ بے حیائی, شیم لیس کام. دیکھیں اور ان کے اندر سب سے بڑا فحاشی کا کام کیا ہے؟ زنا. عمل قوم لوط جو ہوموسیکشوالٹی ہے, ننگا ہونا, محرمات سے نکاح کرنا, فحش کاموں کی ویسے تو لسٹ بنائی جانا بہت بہت زیادہ ہے, لیکن یہ میں نے آپ کو زنا, یہ بہت بڑے بڑے فحاشی کے کام بتائے. اچھا اب یہ جو ہمیں برا لگتا ہے نا, آئے ہمارے پر اتنی پابندیاں کیوں ہیں, آدمیوں کے ساتھ مکس اپ ہونے سے کیوں, اسلام اتنا اس میں ریجڈ ہے, فلاں ہے, بھائی مکس گیدرنگ کیوں نہیں کرنے دیتے, یہ کیا بات ہوئی, اسلام کیوں اس کے اوپر اتنا کرتا ہے, ہمیں بڑی اس پہ تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا دین اصل میں جو بڑی فحاشی کے کام ہے نا, یعنی زنا ہے, اس کے راستے کو بھی بند کرنے چاہتا ہے کہ جو راستہ بند ہو جائے فحاشی تک. یعنی یہاں پہ آپ نوٹ نہیں کر رہے کہ یہ نہیں کہا گیا فحاشی نہ کرو, بے حیائی کے کام نہ کرو, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. یہاں پہ نوٹ کریں, ولا تقربوا, قریب بھی نہ جانا. تم نے اس راستے پہ بھی نہیں جانا جو فحاشی کا ہے. ایسی کوئی گیدرنگ ہے جو فحاشی کی ہے, جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں, یہاں پہ انہوں نے بے حیائی کے کام کرنے ہیں. اللہ اکبر, ایک تو بات مجھے بھول ہی گئی کہ ہماری تو بے حیائی کی ڈیفینیشن جی آج ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے نا. کئی کام آپ کو بے حیائی کے لگتے ہی نہیں, آپ بیٹھ کے ان کو انجوائے کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے, اس میں بے حیائی کی کیا بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ بے حیائی اتنی کامن ہو گئی ہے کہ وہ اب برائی لگتی ہی نہیں ہے. ہماری فطرت اتنی مسخ ہو چکی ہے نا. اب ایک بچہ بھی ہے نا, اس کو بھی ننگا کرے نا تو وہ, حالانکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے, وہ بھی اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے. آج بے حیائی اتنی کامن ہے, ننگے ہونے کو اچھا سمجھاتا تھا اور ننگا ہونا یہ کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. ہم خود اپنے کپڑے اتار اتار کے دکھاتے ہیں, بازو اتار دیے, گلے بڑے کر دیے ہم نے. دیکھو شیطان, حالانکہ گلا بڑا کرنے میں کیا ہے, شیطان نے دیکھو عورت کو ننگا کیا. مرد آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی شارٹس پہن کے پھر رہے ہیں, ان کی ہمیشہ گھٹنوں تک ہوں گی. عورت کی کیوں چھوٹی ہیں؟ مردوں کو نہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بنیان پہن کے جا رہے ہیں, لیکن عورتیں پہنیں گی سلیو لیس. مردوں کا کوٹ پہنا دیے, مردوں کے پینٹیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ, ان کو حکم ہوا کہ ٹخنے ننگے کرو, لیکن آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ٹخنے ننگے کرے, اس کو پینڈو سمجھا جائے گا. لیکن عورت تم ٹخنے ننگے کرو, پتہ نہیں چلتا پیچھے کون کرا رہا ہے, سمجھ نہیں آتی آپ کو, شیطان ہے پیچھے. اس کو ننگا کرا دیا, اس کو کیپریز پہنا دی کہ وہ ننگی ہو جائے. فرمایا تم نے قریب بھی نہیں جانا, یعنی تمہارا اسے واسطہ ہی نہیں, تمہارا تعلق ہی نہیں. جہاں بے حیائی ہے وہاں سے تم دور رہو, اس چاہے وہ مجلس ہے, چاہے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بیٹھنے سے میرے کانوں میں کوئی بات پڑے گی, یہ میں نے یہ مثلا کوئی فلم ہے, کوئی ڈراما ہے, کوئی چیز ہے, اس میں یہاں پہ یہ میں دیکھوں گی تو اس میں کوئی بے حیائی کا سین آئے گا, نہیں. اس کے قریب بھی نہیں جانا, جس سور سے بے حیائی آ رہی ہو وہاں بھی نہیں جانا. اور کہا گیا جو سامنے ہے اور جو چھپی, ظاہر ہے اور جو چھپی بھی ہے. छुपी हुई का मतलब क्या, यानी एक छुपी हुई क्या है कि अकेले में आप कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं ये फिल्में हम देख लेते हैं, बच्चों को नहीं दिखाने। अल्लाह अकबर, बच्चों को नहीं दिखाने का पता है सबसे ज्यादा गैरत वाला कौन है? सबसे ज्यादा आपको तो गैरत बच्चों से आती है, या आप ये सोचते हैं कि हाँ इनके सामने नहीं करनी चाहिए। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाही मैं भी गैरत वाला हूं और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है। सबसे ज्यादा ये गैरत ही है कि उसने तमाम बुरी बातों को हराम करा दी है। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा गैरत आती है। अल्लाह से ज्यादा सही हदीस में अल्लाह से ज्यादा गैरत वाला कोई नहीं है, इसी वजह से उसने सारी बेहयाइयों को हराम कर दिया, खास जाहिर हो या पोशीदा। और आप देखें लेकिन उतना ही इंसान का क्या है कि वो कहते हैं फिल्मों में कुछ मसाला डालो ताकि लोग जो है ना इससे जरा अट्रैक्ट हो। लोगों का जौक कैसा हो गया, बेहयाई को देख के मजे लेते हैं। वो सीन वो जो खलवत का टाइम होता है मर्द और औरत का अकेले, जब उनकी शादी होती है वो नाइट जो उनकी अकेले होती है, आप उस वक्त किसी के कमरे में जाके बैठना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप टीवी पे जरूर देखेंगे कि उसके कमरे में क्या हो रहा है और वो क्या बात कर रहे हैं। उस वक्त हमारी आंखों में हया नहीं होती, और ये ऐसे सीन देख देख के ना हया खत्म होती जाती है। पहले शुरू में एक सीन देखा तो उस वक्त थोड़ी सी शर्म आई, फिर उसके बाद वो शर्म खत्म हो गई, अब उससे भी ऊपर का सीन देख लिया तो अब वो उसकी भी शर्म खत्म हुई, फिर उससे भी ऊपर चले गए। इसी तरह शैतान इंसान को कैसे बेहयाई के रास्ते पे ले जाता। फिर देखो छुपे हुए तो अकेले में, चाहे अब वो यंगस्टर्स हैं, मां बाप का एक डर होता है, अब छुप के कोई बुराई कर रहे हैं, ये बेहयाई भी अलाउड नहीं है कि आप छुप के करो, किसी के सामने ना करो, चाहे वो बच्चे हैं। अगर आपको कोई बेहयाई की चीज है, बच्चों से ही आपको शर्म आती है, अल्लाह से नहीं शर्म आती कि अल्लाह तो देख रहा है ना, और वो सबसे ज्यादा हया वाला है। इन बच्चों को सुला के हम देख लेते हैं तो ये जायज हो गया। अगर कोई चीज हराम है तो वो सब वक्त ही हराम है, ये नहीं है बच्चों के सामने ना देखें हम वैसे हम देखते रहे, या हमारा बाप या हमारा भाई बड़ा गैरत वाला है तो उसके सामने ना ये काम हो और वैसे छुप छुप के लड़कियां कोई काम करती रहे। हम कह देते हैं, क्या कहते हैं आजकल, दैट्स नॉट दैट बैड, इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि हमारे लिए पैमाने ही बदल गए ना, क्राइटेरिया ही बदल गया, बार बहुत ऊंची कर दी हमने, हर चीज ही निकल जाती है उसमें से। और इसी तरह बताना में क्या है, जो दिल के अंदर है, बेहयाई दिल में रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना आंखों का जिना भी होता है। आंखों का जिना क्या है? देखना। जुबान का जिना बोलना। देखिए जिना सिर्फ शर्मगाह नहीं करती है, आंखों से शुरू होता है। ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पे देखना, अखबारों में देखना, रिसालों में देखना, फिल्मों में देखना, टीवी पे देखना, कहीं पे भी, आजकल तो कार्टूनों के अंदर भी शुरू हो गई है, सब आंखों का जिना है। आंख कैसे जिना करेगी? देख के ही करेगी ना। कानों का भी जिना होता है। कानों का जिना क्या है? ऐसी बातें सुनना, ऐसी शायरी सुनना। अब तो गानों में ऐसी शायरी है, म्यूजिक में, वो म्यूजिक तो है ही, कहा गया कि शैतान का गाना है। गाना के अंदर जो जो शायरी है उसके अंदर जज्बात को भड़का देने वाली शायरी है, वो है कानों का जिना, जुबान का जिना है ऐसी बातें बोलना, ऐसी गंदी बातों को, फुहश बातों को जुबान से अदा करना। और गालम गलोच जो है ना, वो भी फहाशी है, उसको भी फहाशी कहा गया, गालियां देना। दिल का जिना क्या है? ऐसे ख्यालात दिल में लेकर आना। अब वो तो कोई भी नहीं देख रहा, किसी को क्या पता मेरे दिल में क्या ख्याल है, और किसी को क्या पता मेरी आंख कहां देख रही है, किसी के किस तरफ देख रही है, क्या पता। अगर अल्लाह जानता है, खाइनातुल आयुन वमा तुख्फि सुदूर, जो दिलों के अंदर खयानतें छुपी हुई और जो आंखों में खयानत करती है और जो दिलों में छुपा हुआ। इसी तरह हमारे आप देखें ऐसे कई जोक्स भी हैं जो बेहयाई पे मबनी होते हैं, कॉमेडीज ऐसी हैं जो बेहयाई पे मबनी होती है, उसको फिर सुन सुन के हंस हंस के लोट पोट होते जाते हैं। अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया कि बेहयाई के करीब भी नहीं जाना, अल्लाहु अकबर। फिर इसी तरह आज ऐसे जो दिन हैं कई मनाए जाते हैं, मसलन वैलेंटाइन डे, फहाशी का एक बहुत बड़ा सिंबल, उसको वो हमारे लिए कुछ भी नहीं, फिर क्या हो गया, फ्लावर ही तो दे रहे हैं तो क्या हो गया। अब आपने वैलेंटाइन डे भी हराम कर दिया, ये फहाशी का सिंपल है कि किस चीज की क्या इसकी बेस है, ये भी तो देखे और फिर देखेंगे क्या ये ठीक है, क्या ये लेजिटिमेट है, क्या ऐसा होना चाहिए। जब आप बेहयाई की चीजें फिल्मों में और उसमें देखते हैं कि कोई महरम नहीं है और कोई ऐसा किसी के साथ सही वाला ताल्लुक नहीं है और उसके साथ तो गलत ताल्लुक कोई कर रहा है, गलत उसके साथ अफेयर चला रहा है, तो वो सही हो जाता है जो आम जिंदगी में सही नहीं है लेकिन फिल्म में सही है। इसीलिए तो बुराइयां फिर माशरे में इतनी फैल जाती हैं क्योंकि वो ये चीजें हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, फिर हम कहते हैं ये तो आम ही है। एक जमाना वो था कि औरत का एक तरह का लिबास पहन के बाहर निकलना इसको मायूब समझा जाता था, आज वही लिबास कितने आम है, कोई मसला ही नहीं। आज गले में दुपट्टा डालना कोई मसला नहीं है, एक जमाने में तो वो बहुत बड़ा मसला था। एक जमाने ये बहुत मसला था कि कोई डेट पे जाए किसी के साथ या किसी का अफेयर हो किसी आदमी के साथ, आज वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आम लड़के लड़कियों के अफेयर्स हैं। एक जमाना होता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम भी एक गाली है और आज बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है कहते हैं व्हाट्स द बिग डील, फ्रेंड ही तो है। एक वो वक्त था कि औरत किसी के सामने नाचे, किसी की बेटी किसी के सामने नाचे, वो एक बुराई, बहुत बड़ी बुराई थी। कैसे, वो तो वो ऐसी औरतें नाचती थी जो कि बुरी औरतें समझी जाती थी। आज इतना वो ये कोई बात ही नहीं है, हमारी अपनी बच्चियां नाचेंगी और लोग उनकी मूवीज बनाएंगे, वो जो मूवी वाला बुलाया हुआ वो मूवी बनाएगा, कोई मसला नहीं। ये भी कोई बेहयाई, इसमें बेहयाई की भी क्या बात है, मूवी तो बनती है और वो तो खुशी ना मनाए हम, हमारी बेटी नाचेगी सबके सामने और कितना अच्छा डांस कर रही है ये, या अल्लाह हमें क्या हो गया, हमारे ईमान कहां चले गए। फरमाया ला तकरबुल फवाहिश, इंसान का अंदर कहता है कि ये बेहयाई है, ये सही नहीं है। हम वन समर के बैठ जाते हैं, वो मूवी वाला हमारी मूवी बना रहा है, कहां से बना रहा है, किधर क्लोजअप्स दे रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं। फोटोग्राफर आ रहा है और मियां बीवी को कह रहा है आप ऐसे ऐसे पोज बनाओ जो कि वो बेडरूम में ही ऐसे पोज बनाए तो अच्छा लगता है, और वो वैसे पोज बना के और बड़ी बड़ी तस्वीरें करके उनको लगाते हैं। देखने वाले को भी शर्म आती है कि ये मैं ना देखूं, ये इनकी प्राइवेट बात है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा फहाशी कैसी आम हो गई है। आप बड़े बड़े बिलबोर्ड या बड़े बड़े साइंस देखते हैं, उनमें औरतों की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें होती हैं, कोई इश्तिहार औरत के बगैर मुकम्मल नहीं। मर्द किस तरह से देख रहे हैं, कोई किसी को परवाह नहीं है, ये एक बेहयाई नहीं है क्या। ना महरम औरत की तरफ देखना क्या बेहयाई नहीं है। औरतें कहती हमें, हम तो आदमियों को देख सकती हैं, भले आदमी औरतों को ना देखे, हम तो आदमियों को देख सकते हैं। आदमियों को आप देखे, लेकिन आप ये बताएंगे जब औरत किसी फिल्मी हीरो को देखती है क्या उसके वही जज्बात है जो कि एक न्यूज कास्टर को देखती है। तो बेहयाई के बहुत सारे शेड्स हैं, बेहयाई बहुत तरह से हमारे अंदर क्रीप इन कर गई, हमारे घरों के अंदर आ गई है, घर घर में बेहयाई की बातें हैं। लेकिन आज वो हाल हो गया है कि बुराई भी बुराई ही नहीं लगती किसी को, सब बाप भी और भाई भी बैठ के एक ऐसे सीन देख रहे होते हैं जो कि इतनी बेहयाई के है कि इंसान शर्मा जाए, मगर वो उनको कोई शर्म नहीं आती, खवातीन को, बेटियां बहनें बीच में सभी बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, ये तो होता ही है, इसमें क्या बात है। अल्लाह अकबर, एक कमरे में भी एक औरत और मर्द को अकेले नहीं होना चाहिए, वहां पे शैतान आ जाता। और आज हमारा क्या हाल है, मर्द और औरतें, जवान बेटियां, बीवी किसी की किसी के साथ बातें कर रही है, हंसी मजाक हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें हया अता फरमाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया और ईमान साथ साथ हैं, साथ साथ, अगर एक चीज रुखसत होती ना दूसरी भी चली जाती है। सोचे हया ईमान का फरमाया हदीस में, हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत ले जाता है, और बेहयाई जुल्म है और जुल्म आग तक ले जाने वाला है, तिर्मिज़ी की हदीस। तो जो मैंने आपको बताया ना, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ है साथ। अगर आप समझते हैं कि आप ईमान वाले हैं, अगर हया चली गई ना, ईमान भी जा चुका है, इज गॉन, और हम अपने आप को दीनदार समझे बैठे। जब बेहया चीजें हमारे सामने आती हैं और हम उनको बेयर करके बैठे रहते हैं और हंसते रहते हैं, तो आपका मतलब है कि हया और ईमान रह गए हमारे अंदर? कम से कम हम कुरान पढ़ने के बाद ये देखें कि हया क्या चीज है, कैसे हया होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि इसकी हमने बैत करनी है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज होते तो आपने फरमाया था कौन मेरे ऊपर इन चीजों के ऊपर बैत करेगा? आप बैत करना चाहेंगी? आप बैत करेंगी इन बातों पर? क्या आप वाकई फहाशी से दूर रह सकते हैं? जब ऐसी ईमेल्स कभी कभी आ जाती हैं जिनके सब्जेक्ट में लिखा होता है, कोई ऐसी बातें लिखी होती है, उस वक्त आप उसको क्लिक करती हैं या छोड़ देती हैं? और जगहों पे कोई पता नहीं इंस्टाग्राम है कि क्या है, उन पे लड़कियों ने अपनी तस्वीरें लगाई हैं या लड़कों की तस्वीरें लगी हैं, क्या ये बेहयाई नहीं कि उनको देखते रहना? या जो अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, क्या ये बेहयाई नहीं है? अब वो क्या पता किसके घर में कौन मर्द देख रहा है? आपने अपने सब ओपन किए नहीं, ये हम यहां गए, हम वहां से आए। क्या आप हर एक मर्द की नीयत जानते हैं और उसकी नीयत का आपको पूरा भरोसा है? याद रखें, इसको जानने के लिए कोई बहुत बड़े इल्म की जरूरत नहीं है, हम पहचान सकते हैं इसको। ये अलग बात है कि हम अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लें, वो अलग बात है। और बेहयाई ना कौमों को ले डूबती है। इस माशरे ने बेहयाई से क्या पाया है बताएं? आज सिंगल पेरेंट्स, सिंगल मॉम्स, औरतों को पता ही नहीं उनके बच्चों के बाप कौन है, ये पाया इन्होंने। और आज हम सोचते इनको फॉलो करेंगे तो हमने भी शायद तरक्की कर लेनी है। इनकी तरक्की दूसरी कामों की वजह से हुई है, इस बेहयाई की वजह से नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम बेहया हो जाओ ना तो जो चाहे कर डालो, फिर जो मर्जी करो, फिर क्या रह गया तुम्हारे अंदर? मतलब ये, जब अगर बेहयाई आ गई तुम्हारे अंदर तो फिर और क्या रह गया? फिर जाओ जो मर्जी करो। वला तक्तुलु नफ्स, और ना तुम कत्ल करो किसी जान को। कौन सी? अल्लती हरमल्लाहु इल्ला बिलहक, मगर वो जिसको अल्लाह ने हराम किया मगर हक के साथ। हक के साथ यानी कत्ल कर सकते हो लेकिन हक के साथ कत्ल करो। हक के साथ कत्ल करने का मतलब क्या होगा? यानी अगर किसी ने हक कत्ल करना क्या होता है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसास के तौर पे अगर जो उसको कत्ल करेगा यानी फांसी देगा, या जो फांसी घाट का जो वो होता है जिसके जिम्मे लगाया होता है वो उसको मार देता है, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, वो कर सकता है। या कोई शादीशुदा जानी है, उसको जब रजम किया जाता है, पत्थर मार मार के मारा जाता है, तो अब कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये है हक के साथ कत्ल करना, ये उसकी सजा थी। या जो मुर्तद हो जाता है उसकी भी सजा कत्ल है। तो ये हक की बातें हैं जिनके ऊपर किसी को कत्ल किया जा सकता है। इसके अलावा या हरबी काफिर है यानी जिसके साथ जंग हो रही है, तो उसको भी जाहिर कत्ल ही करेंगे ना। इसके अलावा किसी की जान नहीं ली जा सकती, चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई काफिर है। ये नहीं है कि भाई काफिर है तो हम जो मर्जी करें अब इनके साथ, तो अब हमें पता नहीं खुद ही छुट्टी मिल गई है, ऐसी कुछ भी नहीं है। इसे हमें देखना चाहिए कि जो जिम्मी भी है ना, जिम्मी कौन होता है? जिसका जिम्मा मुस्लिम हुकूमत के ऊपर होता है, यानी मुस्लिम हुकूमत उसको प्रोटेक्शन देती है, वो मुस्लिम कंट्री में रहता है लेकिन वो खुद गैर मुस्लिम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जिम्मी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दे जो, तो अल्लाह ने उसने अल्लाह के अहद को तोड़ दिया, और जो शख्स अल्लाह के अहद को तोड़ दे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, और जन्नत की खुशबू 70 साल की मसाफत से आती है। यानी इतना ये भी बड़ा गुनाह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम स्टेट में रह रहा है, मुस्लिम स्टेट की प्रोटेक्शन में है, वो वहां पे अमन अमान से रह रहा है, और लोग उसको कत्ल कर देंगे भाई ये इसने ऐसे किया या कोई भी वजह से। तो हजरत उस्मान को जब बागियों ने अपने नरवे में ले लिया था ना, वो मैसूर हो गए थे और उनको कत्ल करना चाहते थे, तो हजरत उस्मान ने लोगों को यही हदीस सुनाई थी कि इन तीन चीजों की सिवा, यानी शादीशुदा जो बदकारी कर ले, या किसी को किसास के तौर पे, या दीन छोड़ दे मुर्तद हो जाए, इसके सिवा कोई किसी को कत्ल नहीं कर सकता। तो फरमाया कि मैंने तो जमाना जाहिलियत में भी कभी बदकारी नहीं की, ना मैंने किसी को कत्ल किया, ना मैं दीन छोड़ने का वसवसा भी मेरे दिल में आया, پھر تم مجھے کس بات پہ قتل کرتے ہو؟ یعنی کسی طرح بھی کوئی مسلمان پھر دوسرے کو وہ نہیں کر سکتا قتل، اس کی جان نہیں لے سکتا. ایون اگر کوئی ارادہ بھی کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا، تو اس کو بھی جہنم ہے اس کے لیے. اس لیے کہ بتایا تھا نا آپ کو حدیث کے قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں. پھر تو وہ بھی اس کو قتل کرنے گیا تھا، وہ بھی اس کو قتل کرنے آیا، ایک نے کر دی اور دوسرا ارادہ رکھتا تھا. تو قاتل کے اوپر دنیا اور آخرت تنگ کر دی جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے یہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.